नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 कंटो 4 अध्याय 30 चैप्टर नंबर 30 और श्लोक संख्या 24 टेक्स्ट नंबर 24।
नमः विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वस्वात्वताम् नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम् नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम् नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्
पढ़िए।
माता जी
नमः नमस्कार विशुद्ध सत्वाय आपको जिसका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभाव से मुक्त है हरे भक्तों के कष्टों को हरने वाले हरि मेद से जिसका मस्तिष्क बद्ध जीव के हेतु उद्धार हेतु कार्य करता है वासुदेवाय सर्वव्यापी श्री भगवान को कृष्णाय कृष्ण को प्रभवे प्रभाव को बढ़ाने वाला सर्वसात्वताम सभी प्रकार के मंत्रों का तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा है। हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप सर्वत्र परमात्मा रूप में रहते हैं अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। एक बार दोहराइएगा, हे भगवान, तो जोर से बोलिए, हे भगवान। भगवान को ही पता लगे ना कोई बोला था। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप सर्वत्र परमात्मा रूप में रहते हैं इसलिए आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण के नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। अब तात्पर्य पढ़ता हूं। पिछले श्लोक में कहा गया किस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहित माया गुण विग्रहाय भगवान तीन प्रकार के शरीर ब्रह्मा विष्णु शिव धारण करते हैं। भौतिक जगत के तीन प्रमुख देव ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अवतार कहलाते हैं। श्री भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर शिव के रूप में हुआ। इतने में ब्रह्म तथा शिव शरीर धारण करते हैं किंतु भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते, फलतः उन्हें विशुद्ध सत्व कहा गया है। उनका अस्तित्व तीनों गुणों के कलमश से सर्वथा मुक्त है, अतः विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं देखना सोचना चाहिए। शास्त्र हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। वस्तु नारायणम देव ब्रह्म रुद्रादि देवते समत नैवेव दीक्षित पाषंडी भवेत ध्रुवम। जो भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों की कोटि में मानता है या ब्रह्मा तथा शिव को विष्णु के तुल्य मानता है उसे पाषंडी श्रद्धा विहीन विश्वास न करने वाला मानना चाहिए। अतः इस श्लोक में विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय के रूप में पृथक किया गया है। हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने पुण्य कर्मों के कारण महान हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्राप्त है। शिव जी वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं हैं, किंतु वे श्री भगवान नहीं हैं। उनकी स्थिति श्री भगवान जीवात्मा विष्णु तथा ब्रह्मा के बीचों बीच है। इसलिए ब्रह्म संहिता में शिव जी की व्याख्या इस प्रकार है। शीरम नथ विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ती हेतु यह शंभुताम तथा समुपेदि कार्याद गोविंदादि पुरुषम तमाम बजामे। शिव जी को दही के समान माना गया है। दधि रूपांतरित दूध ही तो होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इस प्रकार शिव जी भगवान विष्णु की सभी शक्तियों को धारण करते हैं। अब जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे विष्णु से सर्वथा समान नहीं हैं। जिस प्रकार दधि रूपांतरित दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता। यहां पर श्री भगवान को भी वासुदेवाय कृष्णाय कहा गया। कृष्ण आदि भगवान है और सारे विष्णु उनके स्वांश या कला हैं। स्वांश को अंश भी कहते हैं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, क्योंकि वे इस संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि कहलाते हैं। बारंबार भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में रुचि लेते हैं, तो यहां पर उन्हें प्रभवे सर्व सात्वताम कहा गया। सात्वत जाति वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की जाति है। श्री भगवान की शक्तियां असीम है और वे देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हों। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों का हरण करने वाला। त हरि मेदसे का अर्थ है भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए सदैव योजना बनाते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं अवतार लेते हैं और जब भी आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। क्योंकि भगवान समस्त बद्ध जीवों को माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरि मेधस कहलाते हैं। अवतारों की सूची में कृष्ण को परम तथा आदि ईश्वर कहा गया है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा दिव्याकुलं लोकं बढ़ियंती युगे युगे। जब इस संसार में भगवत भक्त देवता असुरों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। मम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरोन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदंतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणि विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। असीम प्रभु का बहुत धन्यवाद। मैं 22 साल में आज संडे को क्लास दे रहा हूं। 22 साल में 88 से मंदिर में था, संडे को क्लास नहीं दिया था आज तक। असीम प्रभु ने आज ये भी कर दिया, और जबकि मैं कभी कोई क्लास में आता नहीं हूं, फिर भी थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर रोज क्लास में हम आएंगे।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद,
भगवान सत हैं, चित माने प्रकाशयुक्त हैं, और अपने में आनंदमय हैं भगवान। कैसे सत्य हैं? हमेशा सत्य, उनकी सत्ता कभी भी ऊपर नीचे या झुटलाई नहीं जा सकते। चित माने प्रकाश, प्रकाश युक्त हैं, भगवान का धाम भी प्रकाश युक्त है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। आनंद स्वरूप है भगवान। कैसे आनंद? संसार में हर शब्द का विलोम होता है, विपरीत शब्द, जैसे दिन का रात, धनी का निर्धन, ऊंच का नीच, गरीब अमीर, धनी निर्धन, एक दूसरे का विलोम है ना। लेकिन आनंद शब्द का विलोम नहीं होता है। होता है, कोई कहे कि होता है, परमानंद होता है, परमानंद विलोम थोड़ी है। ब्रह्मानंद परमानंद, ऊपर से ब्रह्म लगा दिया, प लगा दिया, लेकिन आनंद शब्द के उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान है। विश्वोपत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों के कारण भगवान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं, और रुद्र रूप में संहार करते हैं। श्री राधा राजबिहारी भगवान की, गौनिताय भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों से हमारी रक्षा करें, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक मतलब शारीरिक देह के ताप, दैविक प्रकोप बारिश दैविक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा मच्छर खटमल ये सब ताप। तो इन तीनों तापों से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्णाय वयं नमः, मतलब हम सब नमस्कार करते हैं। पाराशर मुनि ने भगवान किसको कहते हैं, आज के श्लोक का प्रभुपाद जी तात्पर्य में ज्यादातर यही बताए हैं तात्पर्य में, कि किसको भगवान कहा जाता है। जिनमें 64 गुण हों, 16 कलाएं और 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान। श्री भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत एक छोटा ग्रंथ है, इसमें वर्णन किया है। जिसमें 64 गुण न हो, 16 कलाएं न हो और 6 ऐश्वर्य न हो, वो भगवान नहीं। देवताओं में भगवान के जो 50 गुण हैं वो मनुष्यों में बिंदु रूप में होते हैं। अब अगर आप गुण कहें तो फिर इसमें आधा घंटा गुण पढ़ने में चला जाएगा, 64 गुण है ना। तो भगवान के जो 50 गुण हैं वो बिंदु रूप में हम सब में होते हैं, जीवों में। फिर 5 गुण और हैं भगवान के, 55 गुण। जो 55 गुण हैं भगवान में पूर्ण रूप में है, देवताओं में बुद्ध रूप में है, बिंदु रूप में। फिर भगवान के 5 गुण 60 गुण हुए, नारायण में 60 गुण होते हैं और भगवान के कृष्ण में 4 गुण और होते हैं, नारायण और विष्णु के अतिरिक्त। यहां तक कि गौड़ी वैष्णव जो बहुत कट्टर गौड़ी वैष्णव हैं वो तो ये भी कहते हैं कि भगवान राम भी पूर्ण भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान राम का भी 1.5 गुण कम कर देते हैं 64 में से। एक तो मुरली वादन नहीं करते, गुण पूरा कट हो गया, मुरली तो बजाते नहीं रामचंद्र जी, तो पूरा गुण कट हो गया उनका। और दूसरा एक पत्नी बढ़ते हैं इसलिए अनेक स्त्रियों के साथ विहार नहीं करते, इससे रामचंद्र जी का आधा गुण ये काट दिया, इसे 1.5 गुण काट दिया। रामचंद्र जी में 62 गुण होते हैं, विष्णु नारायण में 60 गुण होते हैं, रामचंद्र जी में 62 और कृष्ण में 64 गुण होते हैं। 16 कलाएं होती हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं। पाराशर मुनि ने 6 ऐश्वर्य बताए हैं। क्या है 6 ऐश्वर्य? भगवान बहुत रूपवान हैं, सुंदर हैं भगवान, रूपवान, बलवान, धनवान, कीर्तिवान, ज्ञानवान और वैराग्यवान। एक गुण में भूल गया था, सिंह प्रभु ने अभी मेरे को बताया, 5 गुण याद थे मेरे को, तो अभी आप एक ने बताया, ज्ञानवान। भगवान बहुत सुंदर, उनसे सुंदर इस त्रिभुवन में कोई नहीं। कृष्ण रुक्मिणी संवाद में दशम स्कंध में कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद है, तो उसमें रुक्मिणी को चिढ़ाते हैं भगवान एक जगह पर। राजर्षिता महाभूप लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद भी रूपो दार्य वलोर्जित। रुक्मिणी जी से कहते हैं, जो रुक्मिणी जी ने बार बार पूछा, हे प्रभु आप क्यों नाराज हैं, क्यों नाराज हैं, तो कहा कि मैं नाराज हूं क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो भगवान उसमें एक गलती ये भी बताते हैं रुक्मिणी की, तुमने क्या समझ करके हमसे शादी कर ली, तुमने क्या देखा हमें, बड़े बड़े राजा महाराजा शिशुपाल सब आपके पीछे पड़े हैं और आप साक्षात लक्ष्मी हो, रूप यौवन संपन्ना, तो आपने मेरे को ही क्यों चुना, मैं गरीब घर का, मेरे माँ बाप का ठिकाना नहीं, ऐसा वर्णन है। सबके माँ बाप के एक नाम होते हैं, मेरे माँ बाप के कई नाम हैं, कोई हमको देव के नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन, कोई नंद नंदन, तो मेरे माँ बाप का ही ठिकाना नहीं है, तो ऐसे परिवार में क्यों शादी की। और हमारा घर बार नहीं, सब लोग जमीन में मकान लगाते हैं, मैं पानी के ऊपर मकान लगाता हूं, द्वारिका कहां बसी है, पानी के ऊपर। भगवान ने कहा एक साधारण से साधारण आदमी भी जमीन में मकान बनाता है, मैं इतना डरपोक आदमी की जमीन से भाग करके पानी के ऊपर रहता हूं। तीसरा भगवान कहते हैं, क्या देखा तुमने, क्या मैं बहुत सुंदर हूं, सब कालिया कालिया हमको बोलते हैं, ये तो वो बोलते हैं जिनका मैं काम कर देता हूं, जिनका काम नहीं करता वो बोलते हैं बाहर से भी काला अंदर से भी काला, इसलिए मैं सुंदर भी नहीं हूं। तो रुक्मणी जी उसमें फिर उत्तर देती हैं, बहुत बड़ा संवाद है कि हे प्रभु आप बहुत रूपवान हो, कि हे नंद लला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के, तुम काले हो तो ये हाल है, कहीं गोरे होते तो पता नहीं क्या हो जाता। रुक्मणी जी कहती है इसलिए हे कृष्ण आप बहुत सुंदर हैं। इससे भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत बलवान हैं। देखो सब भगवान कौन है, जो कभी पिटता नहीं है उसको भगवान कहते हैं। जैसे ईसाई भाई लोग, ईसाई मिशनरी को लोग कहें, क्रिश्चियन लोग, कि ईसा मसीह भगवान है, ईसा मसीह कैसे भगवान हो सकते हैं, पिटने वाले भगवान होते हैं? उनको यहूदियों ने क्रूस में लटका दिया, वो भगवान के पुत्र हैं, वो खुद कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कहीं भी बाइबल में आप 10 कमांडमेंट्स देखिए, बाइबल पढ़िए, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, लेकिन कहीं भी जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हर जगह कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, इसलिए ईसा मसीह को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान कभी भी किसी के हाथ से मार नहीं खाते, जिसने खाई होगी भगवान के हाथ से मार खाई होगी। कहीं वर्णन बताए कि भगवान कहीं पिट करके आए, हाँ रणछोड़ में भाग गए थे, वो भी ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए, लेकिन जरासंध से पिटे नहीं। पिटते कहां हैं, जहां उनके भक्त उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, यशोदा मां से पिटते हैं, गोपियों से पिटते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के पिटते हैं। लेकिन ऐसे शौर्य बल में किसी ने वीर रस अपना दिखाया हो बल, ऐसे में भगवान कभी नहीं पिटते। इससे भगवान बहुत बलवान है। गोवर्धन पर्वत जो उठा दे 7 साल की उम्र में, कितने बलवान होंगे। ये गुण इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आजकल हर कोई आदमी भगवान बनना चाहता है। हमारे वैष्णव पंथ में तो इतना नहीं है, लेकिन जहां पर मायावादी लोग प्रचार करते हैं दूसरी विचारधारा के, थोड़ा भी आप किसी का काम कर दो भगवान बोल दो, किसी का बुखार ठीक कर दो डॉक्टर को बोलता तुम मेरा भगवान, छोटा छोटा काम कर दीजिए भगवान हो गए। लेकिन ये आम आदमी को मालूम नहीं कि भगवान किसको कहते हैं, इसलिए पाराशर मुनि ऐश्वर्य बताते हैं भगवान। कीर्तिवान प्रसिद्ध है भगवान, तीनों लोग हो सकता है, हम बॉम्बे में फेमस हो, महाराष्ट्र में हो, पूरे भारत में हो, पूरी दुनिया में हो, लेकिन दूसरे लोकों में नहीं हो सकते, लेकिन भगवान समस्त लोकों में फेमस है, प्रसिद्ध। इसलिए भगवान को कीर्तिमान कहा, कीर्तिवान। धनवान द्वारिका का वैभव कैसा है, सारे जितने महल के पिलर हैं टाइल्स की जगह, आजकल तो टाइल्स लगाते हैं, भगवान के पिलर में क्या लगा है, हीरे जवाहरात माणिक टाइल्स, सोने के खंभे, सोने की द्वारिका थी, 16,108 पत्नियां, एक पत्नी के लिए एक महल, बोलो तो 16,108 तो भगवान की पत्नियों के महल हुए। फिर नौकर चाकर स्टाफ कितना होगा, एक छोटा मोटा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसका स्टाफ कितना होता है, भगवान का इतना बड़ा तो परिवार है, उतने बड़े परिवार के लिए नौकर चाकर कितने हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान जब द्वारिका में राज करते थे तो कोई आदमी किसी केमिकल की फैक्ट्री में काम करता था, सुना, कोई आदमी काम नहीं करता, सिर्फ एक ही काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सब दर्शन करते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान वहां निवास करते हैं। इससे भगवान धनवान है। और भगवान को कोई अपने बेटा बेटी की शादी में बुलाना चाहे, शादी में क्या आपको सब परिवार निमंत्रण है, आइए। बॉम्बे में किसी का बेटा बेटी का शादी हो, द्वारिका में एक चिट्ठी भिजवाए, इनविटेशन कार्ड, कि कृष्ण भगवान आप बाल बच्चों सहित हमारी बेटी की शादी में आशीर्वाद देने आइए, क्या होगा? पूरा महाराष्ट्र खाली करना पड़ेगा। तो भगवान बनना तो अलग, भगवान के साथ रिश्तेदारी या उनको निमंत्रण भी नहीं दे सकते हम लोग। इतना ऐश्वर्य भगवान का, ऐश्वर्यवान है। ज्ञानवान है, जगत गुरु कहा जाता है भगवान को। अर्जुन कितना पकपक कर रहा था, भगवद्गीता पहला अध्याय पढ़ा, कुतस्था कसमलम इदम, क्या है, हे कृष्ण क्यों मारूं, ये मेरा चाचा ताऊ गुरु भाई बंधु, पहले अध्याय में है ना सब, यही शंकर नर यद्य पेटे न पश्यंती लोभोपाधि चेतसा कुलक्षय कृतक दोषं मित्र दोहे च पादकम्। इनको तो ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं क्यों लड़ू, बड़ा बड़ा भाषण दे रहा। शंकर नरकाय कुलंघाना कुलश्च पतंति पितरो हे सांग लुप्त पिंडो दक्रिया, सब पितर लोग नरक चले जाएंगे। और भगवान ने ऐसा उपदेश दिया आधे घंटे में, उसकी बुद्धि फेर दिया और कहा कि आपको शरणागत हूं, आप जो कहेंगे आपके वचनों का पालन करूंगा। ऐसा भगवान उपदेश देते हैं कि कोई भी किसी को भी कन्विंस होना ही है। ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी के साथ कुछ प्रश्नोत्तर किया हो और उसकी समझ में ना आया हो, तुरंत समझ, क्योंकि भगवान ज्ञानवान है, पूरा ज्ञान उन्हीं से निकला है, तो स्वयं भगवान ज्ञानवान है, वैराग्यवान है। देखिए सब कुछ होते हुए भी भगवान का एक ऐश्वर्य है, वैराग्य है भगवान के अंदर। रुक्मणी को बोले एक दिन द्वारिका में कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूं, मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आत्मा रामस्य मनयो, क्या श्लोक है, जो अपनी आत्मा में रमण करे। भगवान कैसे अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। अगर वो कभी किसी को अपने साथ लेके चलते हैं तो उस जीव का उद्धार है, ऐसा नहीं कि भगवान को उनकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं भगवान को। भगवान को पत्नी की भी जरूरत नहीं, ब्रह्मा जी के लिए पत्नी की जरूरत है, नाभि से पैदा कर दिया ब्रह्मा जी को, तो कोई शादी करके पैदा नहीं किया भगवान ने, नाभि कमल से उत्पन्न कर दिया। वैराग्यमान जरासंध को 17 बार लड़ाई में हराया भगवान ने, और 18वीं बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को बुलाया महल में, मेवा मिष्ठान खिलाए, रबड़ी गुलाब जामुन, और 11,000 रुपया दक्षिणा भी दे दिया। वो सब लोभी पंडित थे, मोटी रकम मिली, लाल लाल नोट, खाने पीने को खूब मिला, तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया विजयी भव, जैसे हम बोल देते, थोड़ा किसी ने स्वागत कर दिया 1,001 दे दिया लखपति भव, दूसरे को लखपति भव, तुम हजारपति क्यों भव, तुम जब दूसरे को लखपति बना सकते हो तो उसका 1,001 लेने की क्या जरूरत है, खुद ही 1,00,000 ले लो ना पहले। यानी 101 में हजारपति भव, 1001 में लखपति भव, 11000 में करोड़पति भव। ये सब धंधा है। तो क्या ऐसा भगवान की सेवा में हो सकता है? कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो वो कर सकता है? कोई भी वो आशीर्वाद देने लग जाता। आपने शादी पार्टियों में देखा होगा, शादियों में, बर्थडे पार्टी में, तो लोग अपने बुजुर्ग लोगों को इनवाइट करते हैं, बेटा इनका पांव पड़ो, आशीर्वाद लो। वो शराब पी के टाइट रहता है, आशीर्वाद। वो खुद खड़ा नहीं रह सकता, दूसरों का आशीर्वाद। उसका खुद का चलने का ठिकाना नहीं, क्या आशीर्वाद देगा वो? ये भी एक गलत पद्धति। आशीर्वाद कौन दे सकता है? जो भगवान का भजन करता है। या तो भगवान दे सकते हैं या जो भगवान का भजन कर सकता है। खामोखा कोई भी आशीर्वाद देने लग जाता है। तो जरासंध ने कहा ठीक है, 11000 रुपया दिया, खिलाया पिलाया। जो बात तुमने कही है विजयी भव, अगर इस बार विजयी ना भव तो मैं तुम्हारा सबका रबड़ी गुलाब जामुन पेट से बाहर निकाल दूंगा। सब ब्राह्मण डर गए, भगवान के पास गए। हे प्रभु, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा जे मंत्र जोर जोर से क्यों बोल रहे हो भाई? सब ब्राह्मणों ने कहा विपत्ति आ गई है, छोटे छोटे बच्चे हमारे, पत्नी विधवा हो जाएगी, तो हमारी रक्षा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या करना है? कहा कि आपने 17 बार जरासंध को युद्ध में हराया, लेकिन इस बार हमारे वचन को सत्य करने के लिए आप युद्ध में से भाग जाना। भगवान ने कहा मेरे भागने से तुम्हारा कल्याण है? कहा जरूर कल्याण है, जान बच जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, हम जरासंध मैदान में बाद में आएगा, मैं पहले मैदान छोड़ के भाग जाऊंगा। और जरासंध मैदान में बाद में आया, भगवान पहले भाग गए। इससे भगवान का एक नाम रणछोड़ है, गुजरात में रणछोड़ जी का मंदिर है ना। क्योंकि दूसरे के हित के लिए भागे, तो भगवान की इस लीला में भी उनकी उपासना की जाती है। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। शिव जी को दूध दही बताया, श्रीरंग दधि विकार विशेष योगात, ब्रह्म संहिता में सुबह पढ़ते हैं, संजायते नहीं तथा पृथगस्ते तो यह संभुताम तथा समपेदि कार्यात् गोविंद आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान दूध की तरह हैं और शिवजी दही की तरह हैं, बताए। लेकिन मार्केट में आजकल दूध से महंगा दही हो रखा है, दूध से ज्यादा महंगा दही है कि नहीं है? और वैसे भी उपासना में भी देख लीजिए, भगवान की भक्ति बहुत कम लोग करते हैं, शिव जी की ज्यादा लोग करते हैं। भोलेनाथ के बहुत भक्त मिलेंगे आपको, भोलेनाथ से भी ज्यादा जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके ज्यादा मिलेंगे। शिरडी के साईं बाबा, ये शंकर जी के भक्त सिद्ध, देखो उनके भक्तों की संख्या देखो, और त्र्यंबकेश्वर का रोड देखो। आप नासिक में त्र्यंबकेश्वर जाइए तो शिवजी का मंदिर वैसे ही पड़ा है, सब गंदा बाहर, और शिरडी में जाओ क्या द्वारिका बना के रखा हुआ है। यानी भगवान से नीचे शिवजी आए, शिवजी से भी नीचे अभी भक्तों की उपासना ज्यादा होने लगी। ये कली का प्रभाव। इसलिए भगवान की कथाओं का प्रचार, भगवान की कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाई जाएं। अगर नहीं सुनाएंगे तो शिव की उपासना करेंगे, शिव भक्तों की करेंगे, फिर उनके भक्त होंगे, दारू पीने वाले उनके करेंगे, और क्या होगा, ये सब लोग भगवान हो जाएंगे। 10000 साल बाद तो सब पाखंडी भगवान हो जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं ये जो भागवत धर्म है सनातन धर्म ये 10,000 साल तक चलेगा। उसके बाद ये सब जो घूम रहे हैं आजकल जीओडी गॉड और डीओजी घूम रहे हैं, सभी भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का प्रचार होना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी को सार्थक करना भगवान की वाणी है। पृथ्वी ते आसे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए विमर नाम। गांव गांव शहर शहर हर जगह भगवान के नाम का प्रचार हो। अगर प्रचार नहीं होगा तो कुप्रचार को बढ़ावा मिलेगा, उनकी निंदा करने से विरोध करने से कुप्रचार नहीं रुक जाएगा, उसकी जगह अच्छा प्रचार करेंगे तब कुप्रचार रुकेगा। अकबर बोला बीरबल को एक बार, ये लकीर है और तुम इसकी लकीर को कैसे लंबा कर सकते हो? तो बीरबल ने बाजू में किनारे पर ही दूसरी लकीर खींच दी लंबी, कहा कि देखो ये वाली लकीर इससे लंबी हो गई बाजू। इसे किसी की निंदा करने से इससे नहीं होगा, हम अपना प्रचार करें ऐसे ही कुप्रचार बंद हो जाएगा। सत्संग करने से कुसंग स्वतः समाप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति को बुखार है, बुखार 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 करने से क्या होगा? तुरंत गोली लीजिए, बुखार जाएगा। इसे प्रचार भक्ति के माध्यम से ये कुप्रचार बंद किया जा सकता है। बहुत कुप्रचार हो रहा है बाहर, मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहा हूं आजकल, बहुत कुप्रचार हो रहा है। और अच्छे अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग, कल्चर लोग, धनी माने लोग इनके फंदे मार रहे हैं। इसलिए जितने लोगों को भी हम बचा सके, अगर 1,000 में से 10 आदमी भी हमने बचा दिए ये भी बहुत बड़ा उपकार होगा। पहले तो खुद ही बचना है, तो अपने को बचा करके दूसरे को भी बचाना है। इसे भगवान की भक्ति का, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार, जहां कुप्रचार हो रहा है वहां होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जीव हैं, इनकी मृत्यु होती है, इनकी उम्र 100 साल है। गीता में भी एक श्लोक है, सहस्त्र युग पर्यंत ब्राह्मण यो विदु जना, ऐसा श्लोक। ब्रह्मा जी को भी एक दिन मरना पड़ता है, इनकी उम्र 100 साल होती है। लेकिन इनके 100 साल कितने बड़े हैं? चतुर्युग होती है, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। सतयुग की उम्र है 17,28,000 साल, त्रेता की है 12,96,000, द्वापर की 8,64,000, कलि की 4,32,000 इंटू 1000 करिए 1000, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जब ये चतुर्योगी 1000 बार आके चली जाती है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 बार आके चली जाए, ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, उनको भी मरना पड़ता है। इसे गीता में कहा, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी को भी एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी की स्थिति है। और हमारी स्थिति क्या है संसार में? बद्ध जीव, एक होता है मुक्त जीव, एक होता है बद्ध जीव। मुक्त जीव, मुक्त आत्मा, लिबरेटेड सोल। एक होता है बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव, कंडीशन सोल, एयर कंडीशन सोल, सब बद्ध जीव। जितना एयर कंडीशन में रहते हैं सब बद्ध जीव। और क्या समझते हैं अपने आप को? बहुत बुद्धिमान, कुछ जानते नहीं। आजकल आपने कल गणपति का न्यूज सुना, इस साल जितने भी गणपति हैं सबको टोपी पहना रखी है इन्होंने, वो भी अन्ना हजारे वाली। कल मैं न्यूज देख के आया, मैं कल्याण गया था, हर गणेश जी को टोपी पहना रखा है, टोपी पे लिखा है मी अन्ना हजारे आए, गणपति आए नहीं, मी अन्ना हजारे आए। पिछले साल आपने देखा होगा गणपति को विष्णु बना देंगे, शिव बना देंगे, इस साल हजारे साहब बना दिया उनको। तो कोई तुक नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई इसका शास्त्रीय आधार नहीं, कुछ अपने मन से। थाना में तो एक ने क्या किया, टोपी भी पहना रखी है और जो जन लोकपाल बिल है वो गणपति के चरणों में भी रखा हुआ है और आरती गा रहे हैं, फूल चढ़े लड्डू चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़ा रहा है क्या बिल। बड़ी ही, और कुछ कहो सुनने वाला नहीं, ये क्या है कुप्रचार। ज्यादातर गणपति आपको, मैं परसों कल्याण गया था तो मैं घर में न्यूज देख रहा था, किसी कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानना नहीं चाहते हैं, और जो हम जानते हैं वो तो उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सही बात है हम जानना नहीं चाहते। अभिमान क्या है, मेरे पास पैसा है। अब कह राख लेहु भगवान, हम अनाथ बैठे दो डारी और पार दिशा ध्योबान। दृष्टांत महासागर में एक कबूतर और कबूतरी की कथा है। एक कबूतर कबूतरी की नई नई शादी हुई तो अपनी पत्नी को घुमाने ले गया पिकनिक में कहीं, तो कबूतर कहां ले जाएगा, बगीचे में ले गया और जाके आम की झाड़ के ऊपर बैठ गए और आम की डाल पर बैठ करके कबूतर कबूतरी को कहता है, देखो ये सब बगीचा हमारा, जिधर जिधर तक तुम्हारी नजर जाती है ना ये सब पेड़ मेरे हैं। कबूतरी बोली, धन भाग मेरे, इतने बड़े सेठ के यहां मेरी शादी हो गई, और तुम्हें तरह तरह की रोज फल खाने को मिलेंगे, अनार चीकू क्या। कबूतर ने कहा, और देख अनार चीकू इंपोर्टेड फल भी लगा रखे हैं, देख ले उधर सब पूरा बगीचा मेरा है। बड़ी बड़ी हां करा था, जैसे आजकल कईयों की नई शादी होती है, बड़ा बड़ा पता नहीं यहां क्या होता है, गांव में तो बहुत बहुत हां करते हैं। लड़का होगा बैंक में चपरासी, अगर गांव में शादी करेगा बोलेगा मैं मैनेजर हूं। एक बार एक का शादी हुआ, कई साल पहले की बात, तो शादी हो गई, मैनेजर बताया अपने आप को, तो दो महीने से काम पे ही नहीं जाता। पत्नी ने कहा, बैंक नहीं जाते, मैं मैनेजर हूं ना, अपनों को जाने की क्या जरूरत है, एक ही बार साइन कर दिया, दो महीने का हो गया बस, तनख्वाह लेने के लिए जाने का। और बाद में पता लगा कि वो चपरासी भी नहीं था, वहां व्यवहारिक जीवन में भी बड़ी बड़ी बात हम मांगते हैं, फलाना हमारा, वो जो वहां का डीआईजी है ना हमारा खास, जो आजकल वित्त मंत्री है, उनके यहां जो कुत्ता है उसका बच्चा हमारे यहां, रिश्तेदारी कैसे जोड़ते हैं बताओ, कि प्रधानमंत्री के बंगले में जो कुत्ता है गेट पर उसकी मां की मां हमारे यहां ठहरी, कुत्ते से पहचान लगा, कुत्ता बिल्ली उनके यहां सफेद बिल्ली है ना, तो उसकी जो फर्स्ट जनरेशन है हमारे यहां से गई ठहरी बिल्ली की ऐसे। तो कबूतर बोला सब मेरा। अच्छा, कबूतरी बहुत खुश हो गई। एक बहेलिया घूम रहा था उधर शिकारी तीर लेके, तो उसको कोई ताजा तगड़ा एकदम जवान कबूतर चाहिए था, ढूंढ रहा था। तो बहेलिया की नजर इस कबूतर और कबूतरी पे पड़ गई, दोनों जवान थे। तो बहेलिया ने विचार किया अच्छा तगड़ा कबूतर अगर आज आ गया चक्कर में तो अपना दाल रोटी अच्छी हो गया। तो उसने तीर का निशाना लगाया कबूतर के पेट की तरफ। तो इतने में उस कबूतर की नजर उस बहेलिए पर पड़ गई। कैसे पड़ी? पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप पड़ी। एषां तंतु गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़ता। हर किसी की नजर नहीं पड़ रही। उस कबूतर ने कुछ अच्छा पुण्य कर्म किया होगा इसलिए नजर पड़ गई और तुरंत इधर उधर खिसकने लगा, बोलना बंद कर दिया। कबूतरी ने कहा फलाना वाला पेड़ किसका है? एक मिनट रुक जा, चुप। कहा तुम अभी सब पेड़ अपने बता रहे थे, सामने वाले दो पेड़ के बारे में नहीं बताया। उसका पसीना निकल गया क्योंकि कबूतरी ने नहीं देखा भाई लिया, इसने देख लिया। तो पसीना पसीना हो गया, इधर उधर उड़ता भी नहीं है, इधर इधर डाल पर इधर उधर करता। तब उस कबूतर ने उस वक्त भगवान को पुकारा कि अब कह राख ले भगवान, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से बगीचा अपना बता दिया। मैं बड़ी बड़ी हाँक रहा था, हवा में बात कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। अब कह राख ले भगवान, इस बार बचा दो इससे, ये बहेलिए से इस बार मेरी रक्षा कर दीजिए, मैं दोबारा कभी भी पत्नी को गप्प नहीं हाँकूंगा, बचा दो। फिर दूसरी लाइन में कहा हम अनाथ बैठे दो डारी। कबूतर ने जैसे अनाथ कहा, हम अनाथ, हे प्रभु हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है, ये संसार में जीव की स्थिति कैसी है, हम सब लोग अनाथ हैं संसार में। हम जितने लोग यहां बैठे हैं आप एक पेपर पर साइन करवाइए, सबके सबके साइन अलग अलग होंगे, बेटा बेटी का साइन अलग होगा, पति पत्नी का साइन अलग होगा, आपकी कोख से जन्मी औलाद का साइन अलग होगा। इसका मतलब क्या? हम सबकी तकदीर भाग्य अलग अलग है। ये सिग्नेचर राइटिंग अलग अलग होने का मतलब क्या है? हम सब अकेले हैं संसार में। अगर हम साथ होते तो हमारा सिग्नेचर मिलता नहीं। अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं, ये मेरे पिता हैं, मेरी रक्षा करेंगे, तो पिताजी का साइन सेम मेरा साइन होना चाहिए। राइटिंग में जरूर फर्क होगा। तो कबूतर ने यहां पर सही बात की, जीव भगवान की शरण में कब जा सकता है? जब वो सच बात बोलेगा तब। हम लोग कभी भी सच बात नहीं बोलते, झूठ बोलते। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तुम्हारे नौकर बैठे हैं भगवान दूर करे, भगवान ठेकेदार है दूर करे, ऑर्डर कर दिया दूर करे। बड़ी बड़ी मात पिता तुम मेरे, शरण गहू किसकी, कोई नहीं है इसका, सबको बाप बना के रखा है। और भगवान को भी झूठ बोलता है, तुम ही हो बोलता है मेरे सब, और उधर दूसरे को भी फोन घुमाएगा। अरे जब भगवान से आपकी बात हो गई है, शरण गहू में किसकी मतलब, मैं दूसरे की शरण में कहां जाऊं, मेरी कोई शरण है ही नहीं, तो क्यों दूसरी जगह फोन लगाते हो उसी काम के लिए? इसका मतलब झूठ बोलते हैं। सबसे लास्ट लाइन क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 5000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट लिया और भगवान को बालकनी में बिठा रखा, अपना डाइनिंग हॉल में 25,000-30,000 का एसी लगा रखा है, भगवान के लिए पंखा भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण, बैंक में जितना बैलेंस है तुझको अर्पण, लेकिन तिजोरी मत खोल देना। बटुआ तुमको अर्पण, पैसा मन निकालना, सिर्फ बटुआ अर्पण, अंदर से पैसे मन निकालना। मेरी पत्नी का जेवर तेरा तुझको अर्पण, लेकिन जेवर मत ले जाना। सब अर्पण, लेकिन हाथ मत लगाना प्रभु, हाथ मत लगाना। बताओ झूठ बात है कि नहीं है? इसलिए वैष्णव पंथ में ये आरती नहीं गाई जाती है। ये आरती कौन लोग गाते हैं? झूठे लोग आरती गाते हैं। कबूतर ने सच बात कही, हम अनाथ बैठे दो डारी। तो इतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा उड़ जा, ऊपर को उड़ जा। तब कहा पारदी साध्यो बाण, नीचे से बहिलिया ने बाण मेरा निशाना लगाया। भगवान ने कहा नीचे से निशाना लगाया तो ऊपर को उड़ जा। तब कबूतर बोला ताके डर में उड़बे चाहत, ऊपर को उड़ना चाहता हूं प्रभु, लेकिन ऊपर बैठियो सचान, ऊपर बाज पक्षी मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं ऊपर को उड़ता हूं तो बाज पक्षी खाएगा, नीचे को उड़ता हूं तो बहिला मेरे को मार डालेगा। इसलिए दुई भांति दुख भयो कृपा निधि, अब कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अही दशो पारधि, लागियो तीर सचान, सूरदास गुण कहीं लगी बण्यो, जय जय कृपा निधान। जब कबूतर ने कहा मैं अनाथ हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं दोनों तरफ से बंधन में फंस गया हूं। इसे हे प्रभु, इस वक्त आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जब निराश होकर के भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान की कृपा से क्या हुआ? जमीन के बिल में से सांप निकला, सांप ने बहिले के पांव में डंक मारा, बहिलिया मर गया। और बहिले ने जो बाण कबूतर पर निशाना लगाया था वो बाण उसके हाथ से छूट गया, वो कबूतर के बजाय ऊपर बाज पक्षी को लग गया, बाज पक्षी मर गया। इसलिए सुमिरत ही अही डसो पारधि, लाग्यो तीर सचान। इसे सूरदास जी भक्त कहते हैं कि ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम कर। बगीचा क्या है? ये संसार बगीचा है। कबूतर कबूतरी कौन? हम ही कबूतर कबूतरी, हम कबूतर, हमारी पत्नी कबूतरी, अपना बाजार, ऑर्बिट, ये सब बगीचा। ओ ले लो, बड़ा अच्छा लग रहा है, और जेब में भी तो पैसा होना चाहिए, अच्छा लग रहा है, सब ले लो, ले लेंगे ले लेंगे। प्रभु के आगे जब तक हम सही बात नहीं बोलेंगे तब तक भगवान कभी दर्शन नहीं देते। देखो हम कितने परेशान हो जाते हैं, कितना रोते चिल्लाते हैं, सर पटकते हैं। इस भूमंडल में सबसे दयालु कौन है? भगवान। भट्ट से पश्यति गुरु न पिना अपराधान, सेवा मना कपि कृतं बहुधा विपेति, आविष्करोति पिशुने सबिना विशुयं, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयं। उनसे बड़ा दयालु कोई है? लेकिन इतने दयालु होने पर भी उनको हमारे ऊपर दया नहीं आती। आती है, क्योंकि हमारे सब कर्मों के डिटेल है भगवान के पास। किसी आदमी ने हमारे घर में खजाना चोरी किया हो और वो कहीं गिर के उसकी टांग टूट जाए, हमको दया आएगी? हम हंसेंगे, अच्छा हुआ। इसलिए भगवान के पास हमारे सब कर्मों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दर गाओ तो आज, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता, जिसने जितना जमा कराया मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में।
एक बहुत सुंदर भजन है, कभी दो तीन घंटे की कथा होगी आपको सुना दें। सबका खाता है ऊपर, हम इधर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ट्रेड टैक्स, इधर जाके टैक्स से चोरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के यहां गड़बड़ नहीं कर सकते हम। भगवान बहुत होशियार, बहुत सीधे भी हैं। ताही अहिर की छोहरिया छचियावर छाच नाच नचावे, इतने सीधे भी हैं भगवान। और टेढ़े भी ऐसे हैं कि हमको ऐसा नचाएंगे छाँच बना के, पता लगे। तो कभी भी अपने को बहुत होशियार नहीं समझने का। क्या समझना है? हे प्रभु मैं मंद बुद्धि हूं, कुछ नहीं जानता हूं। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं श्लोक में? मैं आपके आश्रित हूं, नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलक निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति युगायतं निमीषेण चक्षुषा पापृषायतं शून्यायतं जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे प्रभु मैं संसार में फंस गया हूं, आपके भजन में कब फंसूंगा? नयनम गलद सुधारया, मैं रोता हूं, घाटा हो जाता है रोता हूं, लड़के का एडमिशन नहीं होता रोता हूं, बच्चा स्कूल से टाइम पर नहीं आया रोता हूं, कुछ मिल जाए हंसता हूं। ऐसा दिन कब आएगा कि मैं आपके लिए हंसूंगा आपके लिए रोऊंगा? रोते तो हैं हम, गला भी हमारा रुक जाता है, लेकिन ऐसा कभी भगवान के लिए होगा? चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टक में कह रहे हैं, बदनम गदगद रुद्धया गिरा, मेरे बदन में कभी कंपन उत्पन्न होगा? मैं कोई बुरी खबर सुनता हूं कांप जाता हूं। ऐसा कभी होगा कि मैं भगवान की कथा सुनूं, नाम सुनूं, कांप जाऊं? ये प्रार्थना। एक भजन गाइए, अच्छा सब ताली भजन है। सब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप इस जीवन का हर भार, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया इस जीवन का अब भार तुम्हारे हाथों में, ये प्रार्थना करना पड़ेगा। हे प्रभु मेरा सब भार मैंने आपको सौंप दिया है, सर्वस्व आपको सौंप दिया, मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में, मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं। क्या भेद है हम में और भगवान? हम नर हैं, भगवान नारायण हैं, कितना फर्क है। शब्दों में सिर्फ दो शब्दों का फेर है, करनी में फेर देखो। मैं नर हूं, तुम नारायण हो, और स्थिति कैसी है।
मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे, सब सौंप दिया इस जीवन का अब भार तुम्हारे हाथों में, सब इस जीवन का।
ये कैसे संभव होगा। गुरु की शरण में जाकर के, किसी संत महात्मा की शरण में जाकर के, कोई भगवान का शुद्ध भक्त, उसकी शरण अगर हम लें और उसको समर्पित हो जाएं, तो उनकी कृपा से ये भाव उत्पन्न हो सकता है, अपने मन से नहीं होगा।
यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात निषेव्यमाणो नुदिनं मोक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे।
जो कृष्ण का भजन करते हैं, वासुदेव का, जिनका राजन का यही बिजनेस है, यही धंधा है, दूसरा काम नहीं करते हैं, ऐसे भगवान के भक्त की शरण ग्रहण। इससे पहले क्या कहा रघुगुण ने, भरत महाराज ने कहा रघुगुण से,
रघुगुणे तत तपसा न याति न च यज्ञया निरूपणाद गृहत्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महद पाद रजो अभिषेकम।
तपस्या से कुछ नहीं होगा, जल में खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, गृहस्थी के नियमों का पालन करने से कुछ नहीं होगा, अग्निकुंड के बीच में खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, बिना महत पाद रजो अभिषेकम। जब तक भगवान के किसी शुद्ध भक्ति की शरण नहीं मिलेगी, तब तक कल्याण नहीं होगा, सत्य की प्रतीति नहीं होगी। और गुरु क्या करते हैं,
तद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्वदर्शिनं।
तत्व का दर्शन करेंगे, उनको जाकर के तुम अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर दो। न्यौछावर क्या करना है, अपनी सब जीवन भर की पाप की गठरी को ले जाके उनके चरणों में रख दो। गुरु लोग क्या करते हैं,
मेरी ये पाप की मटकी, मेरी ये पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, मेरे गुरु।
अपनी पाप की मटकी को, थैली को ले जा करके भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों में रख दो, तो झटक लेंगे दांत।
मेरे गुरुदेव ने झटकी,
झटक लिया उन्होंने। अब वो क्या करते हैं, गुरुदेव हमारी पाप की मटकी को, हमारी थैली को झटक लेते हैं, ले लेते हैं और जाके भगवान के चरणों में फेंक देते हैं।
इसलिए ब्रह्मानंद ने पटकी, ये ब्रह्मा।
अब भगवान क्या करते हैं, मटकी को फोड़ देते हैं, तो ऐसी मटकी के फूटने में ही फायदा है।
तो अगर फूटे तो फूटन दे, अगर मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, काम ईश्वर से जगत रूठे तो रू, सुत दाराय रू लक्ष्मी, सुत दाराय रू लक्ष्मी, अगर छूटे तो छूटन दे अगर छूट।
भगवान के लिए सुत दारा लक्ष्मी घर बार अगर छूट भी जाए तो छूटन दे, लेकिन भगवान मिल जाए बस। तो कथा आगे बढ़ाएं या यहीं पर? टाइम प्रसाद भी हो गया ना, एक कीर्तन करके अभी कुछ। असीम बाबू तो दयालु हैं, दूसरे लोग गाली भी दे रहे होंगे पीछे से कि भूख लगी है ना क्या। अच्छा एक अच्छा कीर्तन गाओ इसी श्लोक पर आधारित, लेकिन ताली बजाना सब गाओ आप लोग।
नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोपाला भजरे मन भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोपाला भजरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर
ध्यान से गाओ।
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोपाला भजोरे मन नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब राधा जी बड़ी हैं, राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोपाला भजरे मन नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर काटो यम का फंदा भजुर मन गोविंदा काटो यम भजुरे मन गोविंदा भजुरे मन गोपाला नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा नटवर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नितय गौर प्रेमानंद बोले जय जय श्री राधे बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की